بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 18 ہے. آج ہم کتاب مطالعہ پاکستان لازمی ریکارڈ کر رہے ہیں. برائے BA, BSc, BCom جدید نصاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مطابق. اس کتاب کے مصنف محمد نعیم طاہر PhD ریسرچ اسکالر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ صفحہ نمبر 194 ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 18. کس طرح سے امریکہ کے اعلان آزادی کے یادگار الفاظ رقم فرمائے ہیں. روس اور انسانی حقوق. اب مغرب کے چوتھے علمبردار انسانی حقوق کمیونسٹ روس کو لیجئے. یہ اس اشتراکیت کا گہوارہ ہے جو انسانیت کو امریکی برطانوی سامراج اور ہر قسم کے استحصال سے نجات دلانے کا پرچم لے کر اٹھی تھی اور جس نے انسان کو امن و خوشحالی اور حقیقی آزادیوں کی مسرتوں سے ہمکنار کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا. اسے جب پہلی بار زمین پر جلوہ گر ہونے کا موقع ملا تو اس کا سرخ سویرا 2.25 کروڑ انسانوں کی لاشوں کی پہاڑ کی اوٹ سے طلوع ہوا, اور جب اس کی کرنیں مشرق و مغرب میں پھیلیں تو ہنگری, مشرق جرمنی, پولینڈ, چیکو سلواکیا, مقبوضہ ترکستان اور وہ تمام علاقے خون میں نہا گئے جہاں کمیونزم کو در آنے کا موقع ملا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مغربی ممالک کا تصور حقوق انسانی نہیں بلکہ نسلی, علاقائی, قومی اور نظریاتی تعصبات سے آلودہ ہے. وہ جن حقوق کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں انہیں نہ صرف دوسری اقوام تک وسعت دینے کے خلاف ہیں بلکہ انہوں نے پوری قوت صرف کر کے اس امر کی کوشش کی ہے کہ ان کے سوا یہ حقوق کسی اور کو نہ ملنے چاہیے. اقوام متحدہ اور انسانی حقوق. 1945 میں حقوق انسانی کے بارے میں اقوام متحدہ کا ایک کمیشن مقرر ہوا جسے حقوق انسانی کے بین الاقوامی قانون کا ایسا مسودہ بنانے کا کام سونپا گیا جس میں حقوق اور آزادیوں کی تعریفیں متعین کی جائیں. حقوق انسانی کا بل کا پہلا حصہ اس وقت مکمل ہوا جب دسمبر 1948 کو جنرل اسمبلی نے اتفاق رائے سے حقوق انسانی کے عالمی اقرار نامے کی منظوری دی جو کہ تمام انسانوں اور تمام اقوام کے لیے مشترکہ نصب العین کا ایک معیار ہے. 1950 میں اسمبلی کی منظور کی ہوئی ایک قرارداد کے تحت ہر سال 10 دسمبر کو دنیا کے ہر حصے میں یوم حقوق انسانی منایا جاتا ہے. جنرل اسمبلی نے دسمبر 1965 میں ہر قسم کے نسلی امتیاز کو ختم کرنے کے متعلق ایک بین الاقوامی کنونشن کو منظور کر کے اس پر دستخط کرانے کا سلسلہ شروع کیا. اس کنونشن میں کہا گیا کہ ہر قسم کے نسلی امتیاز کو ختم کیا جائے اور اس مقصد کے حصول کے لیے 18 ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. 4 جنوری 1969 کو کنونشن کی طاقت میں مزید اضافہ کر دیا گیا اور کمیٹی کے اجلاسوں کے پہلے سلسلے کا 1970 کے شروع سے آغاز کر دیا گیا. حقوق انسانی کے منظور کیے جانے کی 20ویں سالگرہ کے سال 1968 کو حقوق انسانی کا سال قرار دے کر اسے پوری دنیا میں منایا گیا. اس سال کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ تہران میں حقوق انسانی کے متعلق اپریل اور مئی 1968 میں 2 کانفرنسوں میں حقوق انسانی کو پورا کرنے کی متعلق حکومتوں کی ذمہ داریوں کا باضابطہ اعلان کیا گیا اور ان مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی جو حقوق انسانی کے حصول کی راہ میں رکاوٹ تھے. 10 دسمبر 1973 کو عالمی انسانی حقوق کی جو 25ویں سالگرہ منائی گئی اس روز نسل پرستی اور نسلی امتیاز کے انسداد کے لیے اشرا برائے اقدام کا آغاز کر دیا گیا. بعد ازاں اگست 1978 میں جنیوا میں ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ایک لائحہ عمل کی منظوری دی گئی کہ جنوبی افریقہ کے نسل پرست حکومت کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں تاکہ نسلی امتیاز کا خاتمہ ہو سکے. اقوام متحدہ کا منشور انسانی حقوق. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو انسانی حقوق سے متعلق اس عالمی منشور کا اعلان کیا تھا. وہ گویا اس ضمن میں انسانی کوششوں کی معراج ہے. یہ منشور 30 دفعات پر مشتمل ہے. نمبر 1, تمام انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں اور وقار حقوق کے معاملے میں مساوی الحیثیت ہیں. نمبر 2, ہر فرد نسل, رنگ, جنس, زبان, مذہب, سیاست یا دوسرے نظریات, قومی اور سماجی حیثیت, املاک, پیدائشی یا کسی اور حیثیت, کسی بھی قسم کے امتیاز کے بغیر اس منشور میں صراحت کردہ تمام حقوق اور آزادیوں کا مستحق ہوگا. نمبر 3, ہر شخص کو زندہ رہنے, آزاد رہنے اور اپنی جان کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے. نمبر 4, किसी भी शख्स को गुलाम न बनाया जा सकता है, ना ही महकूम रखा जा सकता है, और ना ही गुलामों की तिजारत हो सकती है। नंबर 5, किसी भी शख्स को तशद्दुद, जुल्म सितम, गैर इंसानी और तौहीन आमेज सलूक या सजा का निशाना नहीं बनाया जा सकता। नंबर 6, हर फर्द को कानून की नजर में बहैसियत फर्द एक तस्लीम शुदा हैसियत हासिल होगी। नंबर 7, हर फर्द को आईन या कानून के जरिए मिलने वाले बुनियादी हकूक के मुनाफी कवानीन के खिलाफ चाराजोई का हक हासिल होगा। नंबर 8, कानून की निगाह में सबकी हैसियत मसावी होगी। नंबर 9, हर शख्स को अपने खिलाफ फाइल करदा इल्जाम से बरात के लिए खुली और मुनसिफाना समाअत का यकसा हक हासिल होगा। नंबर 10, किसी भी शख्स को बिला जवाब गिरफ्तारी, नजरबंदी या जिलावतनी की सजा नहीं दी जा सकती। नंबर 11, किसी फर्द को किसी ऐसे इरादी या गैर इरादी फेल के बिना पर ताजीर जुर्म का मुर्तकिब करार नहीं दिया जा सकता। नंबर 12, किसी फर्द की खलवत, घरेलू, खानदानी और खत्तो किताबत में मुदाखलत की इजाजत ना होगी। नंबर 13, हर फर्द को अपनी हदूद, रियासत में नकलो हरकत और रिहाइश की मुकम्मल आजादी होगी। नंबर 14, हर फर्द को जुल्म व तशद्दुद से बचने के लिए दूसरे ममालिक में पनाह लेने का हक हासिल होगा। नंबर 15, हर फर्द को शोहरत हासिल करने का हक हासिल होगा। नंबर 16, हर बालिग मर्द और औरत को बिला इम्तियाज नस्ल, शहरियत या अकीदा शादी करने और घर बसाने का हक हासिल होगा। नंबर 17, हर फर्द को तनहा या दूसरों के साथ मिलकर जायदाद रखने का हक हासिल होगा। नंबर 18, हर फर्द को फिक्रो ख्याल, जमीर और अकीदे की आज़ादी हासिल होगी। नंबर 19, हर फर्द को आज़ादी इजहार ख्याल का हक हासिल होगा। नंबर 20, हर फर्द को पुरअमन इज्तमाऊ तंजीम का हक हासिल होगा। नंबर 21, हर फर्द को अपने मुल्क की हुकूमत में बराह रास्त या मुंतखब नुमाइंदों के जरिए शिरकत का हक हासिल होगा। नंबर 22, हर फर्द को अपनी बावकार जिंदगी और तामीर शख्सियत के लिए समाजी तहफ़ का हक हासिल होगा। नंबर 23, हर फर्द को काम करने, अपनी पसंद का पेशा मुंतखब करने, बेहतर और मुनसिफाना शराइत से कार हासिल करने और बेरोजगारी से तहफ़ पाने का हक हासिल होगा। नंबर 24, हर फर्द को राहत व आराम, तफरी, औकात कार के माकूल तायुन और तनख्वाह के साथ छुट्टियों का हक हासिल होगा। नंबर 25, हर फर्द को अपनी और अपने अहले खानदान की सेहत और खुशहाली के लिए माकूल मयार जिंदगी बरकरार रखने का हक हासिल होगा। नंबर 26, हर फर्द को हुसूल तालीम का हक हासिल होगा। नंबर 27, हर फर्द को माशरे की सकाफती जिंदगी में आजादाना हिस्सा लेने, इल्म व फनून से लुत्फानंदोज होने और साइंसी तरक्की के सम्राट से मुतमत्ते होने का हक हासिल होगा। नंबर 28, हर फर्द अपने मुआशरती और बैनुल अक्वामी माहौल में जिंदगी बसर करने का मुस्तहिक है। नंबर 29, हर फर्द पर इस मुआशरे से जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं जिसमें रहकर इसकी शख्सियत की आजादाना और मुकम्मल नशोनुमा मुमकिन है। नंबर 30, इस मंशूर के किसी हिस्से की ऐसी ताबीर नहीं की जा सकेगी जिसका मकसद किसी भी रियासत, ग्रुप या फर्द को किसी ऐसी सरगर्मी में मसरूफ होने का हक दिलाना हो जिसके जरिए वो इन मुतायन और आजादियों का ही सफाया कर दे। इंसानी हकूक का आलमी मंशूर दुनिया भर के लिए इंसानी हकूक में यकसानियत पैदा करने और इन्हें लागू करने के लिए अक़वामे मुत्तहिदा ने 10 जनवरी 1948 को इंसानी हकूक के आलमी मंशूर की मंजूरी दी। इसमें कहा गया कि नंबर 1, हर इंसान की जाती इज्जत और हुर्मत इंसानों के मसावी और नाकाबिले इंतकाल हकूक को तस्लीम करना दुनिया में आज़ादी, इंसाफ और अमन की बुनियाद है। नंबर 2, इंसानी हकूक से लापरवाही और इनकी बेहरमती अक्सर ऐसे वहशियाना अफाल कई शक्ल में जाहिर होती है जिनसे इंसानियत के जमीर को सख्त सदमे पहुंचे हैं और आम इंसानों की बुलंद तरीन आरजू ये रही है कि ऐसी दुनिया वजूद में आए जिसे तमाम इंसानों को अपनी बात कहने और अपने अकीदे पर कायम रहने की आज़ादी हासिल हो और खौफ और एहतियाज से महफूज रहें। नंबर 3, ये बहुत ज़रूरी है कि इंसानी हकूक को कानून की अमलदारी के जरिए महफूज रखा जाए। अगर हम ये नहीं चाहते कि इंसान आजिज आकर जबर और इस्तबदाद के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर हो। नंबर 4, ये बहुत ज़रूरी है कि कौमों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को बढ़ाया जाए। चूँकि अक़वामे मुत्तहिदा की मेंबर कौमों ने अपने चार्टर में बुनियादी इंसानी हकूक, इंसानी शख्सियत की हुरमत और कदर और मर्दों और औरतों के मसावी हकूक के बारे में अपने अकीदे की दोबारा तस्दीक कर दी है और वसी तरह आज़ादी की फ़जा में माशरती तरक्की को तकवीत देने और मयार ज़िंदगी को बुलंद करने का इरादा कर लिया है। नंबर 5, मेंबर मुल्कों से ये अहद कर लिया है कि वो अक़वामे मुत्तहिदा के इस तरह के अमल से सारी दुनिया में उसूलन और अमलन इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों का ज़्यादा से ज़्यादा एहतराम करेंगे और कराएंगे। नंबर 6, इस अहद की तकमील के लिए बहुत ही अहम है कि इन हकूक और आज़ादियों की नौयत को सब समझ सकें। शहरी और सियासी हकूक के बैनुल अक्वामी मुहायदे। शहरी और सियासी हकूक से मुतालिक आलमी मुहायदा और इसकी इख्तियारी दस्तावेज 23 मार्च 1971 को नाफिजुल अमल हुए। ये मुहायदा इस किस्म के मामलात मसलन नकल व हरकत की आज़ादी, कानून के रूबरू मसावात, बेगुनाही का गुमान, जमीर और मजहबी आज़ादी, ख्याल व इजहार, पुरअमन एहतजाज, बाहम मिलने जुलने की आज़ादी, उमूर आमा में शिरकत और अकलियतों के हकूक का तस्करा करता है। ये मुहायदा जिंदगी से जबरी महरूमी, जालिमाना या तौहीन आमेज बर्ताव, सजा, गुलामी, जबरी मुशक्कत, जालमाना गिरफ्तारी या हिरासत, खलवत में जबरी मदाखलत, जंगी प्रोपेगेंडे और इसकी नस्ली या मजहबी नफरत की हिमायत जो इम्तियाजी सलूक रवा रखने या तशद्दुद बरतने पर आमादा करती है, इन सब बातों से बाज रहने की हिदायत करता है। इस मुहायदे में 18 अरकान पर हुकूक इंसान की कमेटी भी तश्कील दी गई। शहरी और सियासी हकूक से मुतालिक आलमी मुहायदे की इख्तियारी दस्तावेज में ये जरूरी करार दिया गया है कि इस मुहायदे के मंदरजा ज़ेल हकूक में किसी भी हक से महरूमी के दावेदार जो भी दरख्वास्त दें इस पर गौर किया जाए। इक्तसादी और समाजी और सकाफती हकूक के बैनुल अक्वामी मुहायदे। इक्तसादी और समाजी और सकाफती हकूक से मुतालिक मुहायदा 1976 में उस वक्त नाफिजुल अमल हुआ जब 35 ममालिक ने इनकी तौसीक कर दी या इनमें से हर एक मुहायदे में इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इस मुहायदे का मुसविदा 1948 में असम्बली की जानिब से हकूक इंसानी के आलमी मंशूर की मंजूरी के बाद 1948 से 1954 के दौरान हकूक इंसानी से मुतालिक कमीशन ने तैयार किया था और इसे इकतसादी और समाजी कौंसिल की वसातत से जनरल असम्बली के रूबरू 1955 से 1966 तक की मुद्दत के बारे में भी तबादला ख्याल के लिए पेश किया गया। 16 दिसंबर 1966 को ये मुहिदा मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। इस मुहिदे में जिस इंतहाई अहम हक को बाजाब्ता शक्ल दी गई है वो हकूक इंसानी के आलमी मंशूर में दर्ज नहीं था, वो लोगों का हक खुद इरादियत है। इसमें लोगों को अपनी दौलत और वसाइल को आज़ादी से इस्तेमाल करने का हक भी शामिल है। इकतसादी और समाजी और सकाफती हकूक से मुतालिक आलमी मुहिदा है जो 3 जनवरी 1976 को नाफिजुल अमल हालातेकार, ट्रेड यूनियनों, समाजी तहफ़्फ़ुज़, कुंबे की हिफाजत, रहन सहन के मुहायदों, सेहत, तालीम और सकाफती ज़िंदगी के मसाइल से निमटना है। ये मुहायदा इस अमर का भी अहतमाम करता है कि इन अकसाम में जो हकूक मजकूर हैं वो बतदरीज और बिला इम्तियाज हासिल हों। इंसानी हकूक से मुतालिक इज्तमात। 1990 में बैरूनी ममालिक में काम करने वाले मेहनतकशों के हकूक के सिलसिले में बैनुल अक्वामी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि बेशतर ममालिक ने इसकी तौसीक नहीं की। 14 ता 25 जून की वियना कॉन्फ्रेंस में अकवाम और गिरोहों की तरक्की के हक की करारदाद मंजूर की गई। इस करारदाद को तीसरी दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक की एक बड़ी फतह करार दिया गया, लेकिन इस जिम में कोई खास पेशरफ्त ना हो सकी क्योंकि अमेरिका और मगरबी यूरोप के ममालिक ने सरमोहरी का मुजाहरा किया और मुजाहरा किया हालांकि अमरीका ने यह करारदाद मंजूर कर ली थी। 1994 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने हुकूक इंसानी की तालीम की दुहाई हुकूक इंसानी की तालीम की दहाई मनाने का फैसला किया और उसके मुताबिक दुनिया भर की हुकूमतों से अपील की गई थी कि वो 1995 से 2004 तक के लिए एक मंसूबा तश्कील दें ताकि हुकूक इंसानी की तालीम को बैनुल अक़वामी तौर पर उजागर करके उसे फ़रोग दिया जाए। जनरल असम्बली ने इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए 5 नुकात को तरजीह दी जो दर्ज झेल हैं। नंबर 1, हकूक इंसानी की तालीम के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार की। नंबर 2, ऐसे मंसूबों की तैयारी जिनसे बैनुल अक्वामी, इलाकाई, कौमी और मुकामी सतह पर हकूक इंसानी की तालीम को फ़रोग दिया जा सके। नंबर 3, हकूक इंसानी की तालीम के फ़रोग की खातिर मौसर मवाद की तैयारी के लिए बेहतर रबतों को इस्तेमाल करना। नंबर 4, हकूक इंसानी की तालीम को आम करने की गर्ज से ज़राए इबलाग के किरदार को मजीद मौसर बनाना। नंबर 5, हुकूक इंसानी के मंशूर को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना। 10 दिसंबर 1998 को हुकूक इंसानी के आलमी मंशूर की 50वीं सालगिरह बैक वक्त पेरिस, फ्रांस और न्यूयॉर्क, अमरीका में मनाई गई। अक्वामे मुत्तहिदा ने एक करारदाद मंजूर की जिसके मुताबिक दुनिया की तमाम रियासतें सिर्फ सियासी और शहरी हकूक की राह में आने वाली रुकावटों को दूर दूर करने के जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि इकतसादी और सामाजिक और तहजीबी हकूक की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। दुनिया की तमाम तरक्की पजीर अकवाम ने इस करारदाद के हक में वोट डाले, जबकि अमरीका ने मुखालफत में वोट दिया। सनअती तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल थे, रायशुमारी के वक्त गैर हाजिर रहे। हुकूक इंसानी कमीशन 1945 में हुकूक इंसानी के बारे में 1954 में हुकूक इंसानी के बारे में अकवाम मुत्तहिदा का एक कमीशन मुकरर हुआ, जिसे हुकूक इंसानी के बैनुल अक्वामी कानून का ऐसा मुसविदा सौंपा गया जिसमें हुकूक और आज़ादियों की तारीफें मुतय्यन की जाएं। तरीक़ाकार, हुकूक इंसानी कमीशन अपने काम को मखसूस अंदाजों के मुताबिक सर अंजाम देता है ताकि इंसानी हुकूक के बारे में वाज़ करदा कवानीन पर बेहतर तरीके से अमल दरामद करवाया जा सके। इकतसादी और समाजी कौंसिल की जानिब से 1959 में मुकर्रर करदा एक जाब्ते के तहत इस अमर का इंतजाम किया गया कि हुकूक इंसानी के लिए आलमगीर एहतराम को फरोग देने के मुतालिक उसूलों के बारे में अकवाम मुत्तहिदा के नाम खतूत भेजे गए। इनकी तलखीस एक गैर खुफिया फहरिस्त जो हर साल हुकूक इंसानी कमीशन को भिजवाई जाती है कर दी जाती है। हुकूक इंसानी के मुतालिक दीगर मरासलात जो ज्यादातर इन हुकूक से यकसर महरूमी या इनकी खिलाफ वर्जियों से मुतालिक शिकायात पर मुश्तमिल होते हैं की तलखीस एक खुफिया फहरिस्त में कर दी जाती है, जो निजी तौर पर कमीशन के अरकान और अकलियतों के तहफ्फुज़ और इम्तियाज के इंसदाद से मुतालिक इसके ज़ेली कमीशन को फराहम की जाती हैं। लिखने वालों के नाम सीगा राज में रखे जाते हैं, अलबत्ता जहाँ लिखने वालों के अपने नामों के इजहार पर एतराज ना हो वहाँ उनके नामों का ऐलान कर दिया जाता है। जिन मरासलात की तलखीस खुफिया फहरिस्त में की जाती है उनकी नकुल इस मिंबर मुल्क को भी भेजी जाती है जिसका जिक्र इन मरासलात में किया गया हो, और जवाब में जो एक हुकूमत भेजना चाहती है वो खुफिया फहरिस्त के हमरा उस कमीशन को फराहम कर दिया जाता है। 1976 में इस कमीशन ने इंसानी और बुनियादी आज़ादियों की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक हर साल तबादला ख्याल करने का फैसला किया। ये ज़ेली कमीशन हर साल निजी इजलासों में मरासलात और उनसे वास्ता वाबस्ता हुकूमत के जवाबात और दीगर मुतालिका मालूमात पर तबादला ख्याल करता है कि आया ये खसूसी हालात जो बज़ाहिर हुकूक इंसानी की मुसद्दिका खिलाफ वर्जियाँ मालूम होते हैं हुकूक इंसानी के सामने पेश किए जाने ज़रूरी हैं। 1969 में कमीशन के माहरीन का एक खसूसी वर्किंग ग्रुप कायम किया गया ताकि दुनिया में हुकूक इंसानी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल का जायजा लिया जा सके। इस वर्किंग ग्रुप का बुनियादी मकसद जंग के जमाने में शहरी अमले के तहफ्फुज़ के सिलसिले में 1949 के जेनेवा मुहिदे से मुतालिक इसराइल के खिलाफ वर्जियों के इल्जाम की तहकीकात करना था। 1974 में इस कमीशन ने सितंबर 1973 के वाकयात के बाद चिली में हुकूक इंसानी की मुबैना खिलाफ वर्जियों के बारे में इस मुल्क की हुकूमत से अपनी तशवीश का इजहार किया। फरवरी 1975 में इस कमीशन ने वहां पर हुकूक इंसानी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक एड हॉक वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। खवातीन के हुकूक और अक्वामे मुत्तहिदा मौजूदा मुआशरा खवातीन के मर्तबे में अदम मसावात का शिकार है। इस सूरत हाल को आसानी से या बहुत जल्द तब्दील नहीं किया जा सकता। मौजूदा जमाने में भी औरतों के साथ सरकारी मुलाजमतों में फर्क और इम्तियाज रवा रखा जाता है। औरतों को मर्दों के बराबर काम करने के बावजूद कम उजरत मिलती है। खानदानी जायदाद पर कब्जा और इख्तियार होने और कुंबे के दूसरे मामला के सिलसिले में भी औरतों और मर्दों के मरातब में फर्क पाया जाता है। इसके अलावा बहुत से मुल्कों में औरतों को मसावी तालीम हासिल करने का हक भी नहीं है। अक्वामे मुत्तहिदा गुज़िश्ता नसफ सदी से भी ज्यादा अरसे से खवातीन की तरक्की और इन्हें माशरे में अहम मकाम दिलाने के लिए सरगर्म अमल है। इस जिम में 1946 में खवातीन की हैसियत का तयन करने के लिए एक कमीशन कायम किया गया जिसका मकसद खवातीन के मसाइल को हल करना था। कमीशन के काम के नतीजे में वो तमाम पहलू सामने लाए गए जिनमें औरतों को मर्दों के बराबर हैसियत हासिल नहीं है। खवातीन की तरक्की के लिए बहुत सी काविशें की गईं जिनमें हर किस्म के इम्तियाज के खात्मे के लिए अक्वामे मुत्तहिदा के कन्वेंशन, खवातीन के खिलाफ इम्तियाज के खात्मे का कन्वेंशन मुनक्किदा 1969 खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। खवातीन के खिलाफ इम्तियाज के खात्मे के लिए अक्वामे मुत्तहिदा का कन्वेंशन 18 दिसंबर 1979 को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने तस्लीम किया। 3 सितंबर 1981 को 20 ममालिक ने जब इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए तो इसने एक मुहिदे की शक्ल इख्तियार कर ली। 1991 में 100 से ज्यादा ममालिक इस पर दस्तखत कर चुके थे। कन्वेंशन बराबरी के हुसूल का हामी है और इस बात पर जोर देता है कि हुकूक की बराबरी और इंसानी वकार के खिलाफ वर्जी से गुरेज किया जाए। कन्वेंशन की दफा दर्ज ज़ेल है। नंबर 1, मौजूदा कन्वेंशन में लफ्ज खवातीन के साथ गैर मसावियाना सलूक का मतलब इनसे इम्तियाजी बर्ताव किसी खास ओहदे या काम के लिए उनकी अदम शमूलियत बावजूद इनके मसावी तशखुस के इनको बुनियादी शख्सी आजादियों से महरूम रखना होगा। नंबर 2, कन्वेंशन में शरीक ममालिक खवातीन के खिलाफ अदम मसावात की मजम्मत करते हैं और बगैर किसी ताखीर के और हर मुमकिन तरीके से खवातीन के खिलाफ इम्तियाजी रवैयों का खात्मा, औरतों को कानून के जरिए मर्दों के साथ साथ मुकम्मल हकूक, ऐसी ताजीरात का खात्मा जिसमें खवातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाए और किसी भी इदारे, शख्स या तंजीम की तरफ से औरतों के साथ साथ मुकम्मल हकूक, ऐसी ताजीरात का खात्मा जिसमें खवातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाए और किसी भी इदारे, शख्स या तंजीम की तरफ से औरतों के साथ गैर मसावी सलूक के खिलाफ इकदाम करना। नंबर 3, फरीक ममालिक समाजी, इकतसादी और सियासी मैदान में मर्दों के बराबर औरतों को तमाम हकूक देने के लिए जरूरी इकदाम करेंगे। नंबर 4, हुकूमतों की तरफ से आर्जी तौर पर लिए गए खास इकदाम जिनका मकसद खवातीन और हजरात के दरमियान असली मसावात पैदा करना हो, इम्तियाजी नहीं समझे जाएंगे। और ऐसे इकदाम भी जो मौजूदा कन्वेंशन में इतफाक राय से मंजूर किए गए हैं जिनका मकसद जच्चा की हालत बेहतर बनाना हो, वो भी इम्तियाजी नहीं समझे जाएंगे। नंबर 5, ऐसे इकदाम किए जाएं जिनका मकसद ऐसे कवानीन, रसूमात और तासुबात का खात्मा करना है जो मर्द या औरत को जिन्स की बुनियाद पर एक दूसरे से कमतर बनाते हैं, और खानदान में शऊर पैदा करना कि जचगी एक समाजी अमल है और बच्चों की तरबियत और परवरिश मर्द और औरत दोनों की जिम्मेदारी है। नंबर 6, तमाम फरीक ममालिक कानून साजी के साथ ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे औरतों की फरोख पर इस्तेहसाल खत्म हो जाए। नंबर 7, तमाम फरीक रियासतें खवातीन के लिए सियासी और सरकारी सतह पर मुहैया होने वाले हकूक की जमानत देंगे, मसलन वोट डालने का हक, सरकारी मुलाजमतों और कामों में हिस्सा लेने का फर्क हक और सरकारी और सियासी तंजीमों में शिरकत का हक वगैरह। नंबर 8, तमाम फरीक ममालिक ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे खवातीन मर्दों के बराबर बगैर किसी इम्तियाज के आलमी सतह पर अपनी हुकूमतों की नुमाइंदगी और आलमी तंजीमों में शिरकत कर सकें। नंबर 9, फरीक रियासतें मर्दों के साथ औरतों को भी शहरियत हासिल करने का हक देंगी। इसके अलावा बच्चों की शहरियत के मामले में औरतों और मर्दों के बराबर हकूक दिए जाएं। नंबर 10, तमाम ममालिक ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे तालीम के मैदान में औरतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक खत्म हो और मर्दों के बराबर मसावी हकूक हासिल हों। नंबर 11, फरीक ममालिक खवातीन को भी रोजगार के मौके मर्दों के बराबर मुहैया करेंगे ताकि खवातीन भी हकूक हासिल कर सकें जो मर्दों को आमतौर पर हासिल हैं, जिनमें खास तौर पर रोजगार के मौके, पेशा वाराना तरबियत का हुसूल, बराबर उजरत, मसावी बरात, समाजी तहफुज, हमल के दौरान जचगी के लिए तातीलात और वसाइल से बचाव के लिए मुनासिब कानून साजी करना शामिल है। नंबर 12, फरीक रियासतें वो तमाम इकदाम करें जिनके जरिए सेहत के मैदान में औरतों के खिलाफ इम्तियाज को खत्म किया जा सके और इन्हें मर्दों के बराबर सेहत की सहूलियात, जिनमें खानदानी मनसूबा बंदी, जचगी के तमाम जरूरी सहूलतें जिनमें खाना पीना भी शामिल है, अगर जरूरत हो तो ये सहूलियात मुफ्त मुहैया की जाएंगी। नंबर 13, तमाम ममालिक इकतसादी और समाजी जिंदगी के इन पहलुओं पर मसावी उसूलों के तहत इकदाम करें जिनसे मर्द और औरत की बराबरी पर असर होता है, मसलन खानदानी मराहत, कर्जा जात का हुसूल और सकाफती उमूर में हिस्सा लेने के हुकूक वगैरह। नंबर 14, फरीक ममालिक देही इलाकों की औरतों के मसाइल और अपने अपने खानदान की किफालत में उनके किरदार को मद्देनजर रखेंगे और इस कन्वेंशन में दी गई मराहत को हर मुमकिन इकदाम के जरिए देही औरतों पर भी लागू करेंगे, मसलन तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेना, मुआशरती तहफ़ुज़ के तमाम प्रोग्रामों से फायदा उठाना और कोऑपरेटिव प्रोग्रामों के जरिए मुलाजमत हासिल करना वगैरह। नंबर 15, तमाम रियासतें मर्द और औरतों की मसावी हैसियत को कानूनी तौर पर तस्लीम करेंगे, औरतों को भी मर्दों की तरह जायदाद की खरीदो फरोख्त, ट्रिब्यूनल के सामने केस लड़ना, मुआशरती आज़ादी, अपनी मर्जी की जगह पर रिहाइश इख्तियार करने और डोमिसाइल हासिल करने के हकूक हासिल होंगे। नंबर 16, कन्वेंशन में शामिल तमाम रियासतें शादी और समाजी रिश्तों के हवाले से खवातीन को मर्दों के मसावी हकूक बहुम पहुंचाएंगी। نمبر 17 تبعیض، خواتین کے خلاف ہر قسم کے امتیاز کو ختم کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل مالک ایک کمیٹی تشکیل ممالک کو کنونشن کے نفاذ پر 5 سال بعد ایک رپورٹ دینی ہے. کمیٹی کے قواعد، طریقے اور اجلاس کا شیڈیول یو این او کی جنرل اسمبلی کو رپورٹ پیش کرے گی. مخصوص ایجنسیاں کمیٹی کو اپنی سفارشات پہنچا سکتی ہیں. 23 تا 30، زیادہ مؤثر حکومتی قانون سازی اور بین الاقوامی معاہدے وغیرہ پر کنونشن کا اثر نہیں پڑے گا. حکومتیں ان تمام اقدامات کو اپنائیں گی جن سے کنونشن میں دیے گئے حقوق کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. کنونشن اقوام متحدہ کے سیکرٹری کے پاس منظوری کے لیے رکھی گئی ہے. کنونشن 20 ممالک کی منظوری کے بعد وجود میں آئی. ہر ملک جو اس کو منظور کرتا ہے وہ منظوری کے 30 روز بعد کنونشن کا پابند ہو جاتا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کسی ملک کی شرائط کے ساتھ منظوری کی اطلاع تمام ممالک کو پہنچاتا ہے اور وہ ان تمام شرائط کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر سکتا ہے. ممالک کسی بھی وقت شرائط واپس لے سکتے ہیں. کنونشن کے نفاذ میں جھگڑے کی صورت میں ممالک بین الاقوامی عدالت تک رجوع کر سکتے ہیں. بین الاقوامی انسانی حقوق کے تمام معاہدوں میں یہ معاہدہ دنیا بھر میں انتہائی اہمیت کا حامل خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کمیشن دنیا کی آدھی آبادی یعنی عورتوں کو انسانی حقوق کے دائرہ کار میں لاتا ہے. کنونشن کی روح اقوام متحدہ کے مقاصد سے وابستہ ہے، جن میں بنیادی انسانی حقوق، انسان کے وقار اور قابلیت اور مردوں کے مساوی حقوق کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. خواتین کے حقوق کا معاہدہ پہلی قانونی دستاویز جو بلا شرکت غیر خواتین کے حقوق سے متعلق تھی اور جس کی منظوری جنرل اسمبلی نے 1952 میں دی تھی. یہ خواتین کے سیاسی حقوق سے متعلق معاہدہ تھا. اس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ نمبر 1، خواتین تمام حقوق مردوں کے مساوی شرائط پر بلا امتیاز ووٹ دینے کی حقدار ہوں گی. نمبر 2، خواتین سرکاری عہدوں پر کام کرنے اور مردوں کے مساوی شرائط پر مروجہ ملکی قانون کے مطابق سرکاری فرائض انجام دینے کی اہل ہوں گی. نمبر 3، شادی شدہ خواتین کو شہریت سے متعلق 1957 کے معاہدہ کرنے والے ہر ملک اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کی کسی شہری اور کسی غیر ملکی کے درمیان نکاح و طلاق اور نہ ہی شادی کے دوران شوہر کی جانب سے شہریت کی تبدیلی بیوی کی شہریت پر کسی صورت سے اثر انداز ہو سکے گی. نمبر 4، شادی سے رضامندی، شادی کے لیے کم سے کم اور شادیوں کی رجسٹریشن سے متعلق 1961 کا معاہدہ اور اس موضوع سے متعلق 1965 کی ایک سفارش دونوں کا خصوصی مقصد بچپن کی شادیوں کا انسداد اور شادیوں کے لیے آزادانہ مرضی کے حصول کی محافظت ہے. عالمی خواتین کانفرنسیں، اقوام متحدہ کی کوششوں کے باعث 1975 میں خواتین کا عالمی سال منایا جانے لگا اور اس کے بعد عشرہ خواتین 1976 سے 1985 کا اعلان ہوا. اس دوران میں 1975 میں میکسیکو، 1980 میں کوپن ہیگن اور 1985 میں نیروبی میں خواتین کی عالمی کانفرنسیں منعقد کی گئیں. ان کانفرنسوں کی وجہ سے خواتین کے مسائل کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی. 4 تا 15 ستمبر 1995 میں بیجنگ میں خواتین کی چوتھی بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی گئی. اس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اگر خواتین کو مردوں کے مساوی حقوق نہ دیے گئے تو اقتصادی اور سماجی ترقی کی رفتار رک جائے گی. نیز انسانی وسائل کا غلط استعمال مجموعی معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر دے گا. بچوں کے حقوق، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو محرومیاں خواتین کی ذہنی اور جسمانی صحت پر تباہ کن اثرات ڈالتی ہیں، اکثر و بیشتر ان کے بچے بھی انہی محرومیوں کا شکار نظر آتے ہیں. دنیا بھر میں عورتوں اور مردوں کے مابین کام کاج کرنے کی غیر منصفانہ تقسیم اور خواتین پر گھریلو ذمہ داریوں کے بوجھ کے سبب وہ اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کی مناسب دیکھ بھال نہیں کر پاتی. ظاہر ہے کہ مائیں صحت مند ہوں گی تو وہ صحت مند بچوں کو جنم دے سکیں گی. اقوام متحدہ نے جہاں خواتین کے حقوق متعین کیے ہیں، وہاں اس نے بچوں کے حقوق کا تعین بھی کیا ہے. اس ضمن میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے 30 نومبر 1989 کو بچوں کے حقوق کے معاہدے کی منظوری دی. پاکستان نے 15 نومبر 1998 کو بچوں کے حقوق کے معاہدے پر اس شرط کے ساتھ دستخط کیے کہ اس پر اسلامی قوانین اور اقدار کے ساتھ عمل کیا جائے گا. اس بین الاقوامی معاہدے کے اہم نکات درج ذیل ہیں. نمبر 1، 18 سال سے کم عمر کے تمام لڑکیوں اور لڑکیوں کو بچہ تسلیم کیا جائے گا. نمبر 2، بچوں کے ساتھ رنگ، نسل، عقیدے، مذہب، زبان، قوم، قبیلے، حسب نسب یا کسی معذوری کی وجہ سے امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. نمبر 3، سماجی، معاشی یا معاشرتی وجوہات کی بنا پر اگر ماں باپ، سرپرست یا کوئی ادارہ بچے کی مناسب دیکھ بھال نہ کر سکے گا تو حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ بچے کی مناسب دیکھ بھال کا انتظام کرے۔ نمبر 4، پیدائش کے فوراً بعد بچے کا نام رکھا جائے گا، اسے شہریت دی جائے گی، حکومت اس بات کی حفاظت کرے گی کہ نام، شہریت اور خاندان کے حوالے سے بچوں کی پہچان قائم رہ سکے۔ نمبر 5، حکومت اس بات کا خیال رکھے گی کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے ان کی مرضی کے بغیر جدا نہ ہونے پائے، اگر کسی وجہ سے جدائی ضروری ہو جائے تو بچے کے بہترین مفاد کو سامنے رکھا جائے گا، بچے کو ماں باپ دونوں سے ملنے کا حق دیا جائے گا، اگر ماں باپ بچے کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو بچے کو ان سے الگ کر دیا جائے گا، اگر بچہ اور ماں باپ دو الگ الگ ملکوں میں رہ رہے ہوں تو ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ملنے کے لیے ملک سے دوسرے ملک میں آ جا سکیں، اور دونوں ممالک انسانی بنیادوں پر خاندان کو اکٹھا ہونے کا فوری موقع دیں گے۔ نمبر 6، ہر حکومت کا فرض ہوگا کہ بچوں کو اغوا کرنے یا ان کو زبردستی دوسرے ملکوں میں لے جانے یا رکھنے کی ہر کوشش کو روکے اور ناکام بنائے۔ یہ صفحہ نمبر 206 ہے، پارٹ نمبر 18 یہاں مکمل ہوتا ہے۔